हमारे आदरणीय वरिष्ठ राजयोगिनी गीता दीदी जी हमारे समक्ष हैं। तो आइए आज की ये सुबह कुछ पंक्तियां आप लोगों के नाम हमारे बीच में दीदी जी को बताना चाहेंगे कि तीन दिन से रेगुलर क्लासेस चल रही थी और कुछ डॉक्टर्स को क्योंकि बहुत टाइट शेड्यूल होता है तो संडे ही निकलना पड़ा और कुछ हमारे बीच में ऐसे अनुभवी रिस्पेक्टेड ऐसे हीरे बच्चे हैं जो हमारे समक्ष हैं। तो कुछ लाइनें आप लोगों के लिए भी लिखी हैं। जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए क्योंकि आपने लगातार अथक होकर के क्लासेस की हैं। तो आपके लिए कुछ लाइनें लिखी हैं कि मनुष्य आत्माएं इस रंगमंच पर आते और एक दिन चले जाते, मनुष्य आत्माएं इस रंगमंच पर आते और एक दिन चले जाते, सफल है वह जो खुद और खुदा को पहचान पाते, सफल है वो जो खुद और खुदा को पहचान पाते, संकल्प श्वास और समय जो ईश्वर अर्थ लगाते, संकल्प श्वास और समय जो ईश्वर अर्थ लगाते, वही स्व परिवर्तन द्वारा एक दिन विश्व परिवर्तक कहलाते, वही स्व परिवर्तन द्वारा एक दिन विश्व परिवर्तक कहलाते। तो आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि आप सभी जो हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तक के टाइटल लेने जा रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय गीता दीदी जी हैं तो मैं संस्कृत में दीदी जी का परिचय देना चाहूंगी। हमारी दीदी जी को हम एट द बिगिनिंग ऑफ माय MBBS जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो दीदी जी का प्रोग्राम हुआ था तो हमारे दीदी जी भोपाल आए थे तो बिगिनिंग इन्हीं से हुई। सो थैंक यू सो मच दीदी जी, आपने हमारी शुरुआत की है तो वो हमें आज भी याद रहता है। तो ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी का जैसा नाम है वैसा ही उनका जीवन है। जैसे आपने गीता के महावाक्य सुने होंगे, कर्म करो फल की चिंता करो मत करो, और साथ ही सुख दुख जय पराजय निंदा स्तुति हर स्थिति में कैसे रहो एक रस रहो। तो दीदी जी का व्यक्तित्व भी ऐसा ही है। और आप सोचिए 1969 आज से 50 ईयर्स बैक जो है दीदी जी इस संस्था से जुड़ी और मैट्रिक में साउथ गुजरात में दीदी का जो पूरा फर्स्ट रैंक आया था 10th क्लास में बोर्ड में एट दैट टाइम, आप सोचिए। और उस समय फिर जोरदार तालियां बजा सकते हैं आप, उस समय जब नारी शिक्षा वॉज एट द बिगिनिंग और उसी समय दीदी का मैट्रिक में फर्स्ट आना इज अ बिग डील और बिग थिंग। और आज दीदी जी ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी बहुत हाईएस्ट पोजीशन में हैं और दीदी जी की विशेषता है टीचर्स ट्रेनिंग भी दीदी जी कराती हैं। ना सिर्फ स्वयं को उन्होंने बनाया है परंतु अनेक टीचर्स बहनें ब्रह्मा कुमारी बहनों को तैयार करती हैं उनकी टीचर ट्रेनिंग में बहुत अच्छी क्लासेस के द्वारा, उनको बहुत डिवाइन इंटेलेक्ट सिखाती हैं कि दिव्य गुणों से उनको सजाती हैं। देश नहीं अपितु विदेशों में भी दीदी ने जाकर के जैसे USA, लंदन, कनाडा, मॉरिशस जैसे देशों में जाकर के इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाया है। और साथ ही दीदी बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की हेडक्वार्टर की जो है कोऑर्डिनेटर भी हैं। और दीदी जी अथक सेवा, बहुत ज्यादा अथक सेवा, जो ज्ञान सरोवर आप लोग घूमने जाएंगे आज या कुछ लोग गए होंगे, दीदी ने बिगिनिंग में वहां 17 साल रह करके फाउंडेशन को मजबूत किया है और आज आप सबको अपने ब्लेसिंग और हमारे बहुत सुंदर अनुभव जो आज का समय है कॉल ऑफ द टाइम, क्योंकि हम हर काम समय देख करके करते हैं तो हमें इस समय को देखकर क्या अपने अंदर परिवर्तन लाना है दीदी जी हमारे बीच में रखेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत है हमारी आदरणीय दीदी जी का, धन्यवाद। और मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगी कि हमारे ऐसे चैतन्य चमकते हुए हीरे का सुंदर पुष्पों से स्वागत करें। थैंक यू।
ओम शांति। पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं आप सभी बड़ी रुचि के साथ ज्ञान और योग की बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। दो मूल शक्तियों को आपने समझ लिया है। हम स्वयं कौन है और पिता परमात्मा कौन है। हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा है और हमें अपना बुद्धि योग परमात्मा से लगाना है। योग की विधि भी आपने समझ ली है कि राजयोग में कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है, ना औपचारिक क्रियाएं हैं। इसमें कुछ भी रटना, जपना, गाना, आवाज नहीं करना है, ना कोई साधनों का आधार है। राजयोग का आधार है सत्य ईश्वरीय ज्ञान, जो स्वयं परमात्मा ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं को देते हैं। तो जैसे जैसे ईश्वरीय ज्ञान आप सुनते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपका बुद्धि योग परमात्मा से लगता जाएगा। परमात्मा की याद हमें सहज नेचुरल आती रहे, उसकी विधि है भगवान से संबंध जोड़ो। जैसे दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, हमें सबकी याद नहीं आती है। हमें किसकी याद आती है? जिसको जानते हैं, पहचानते हैं, जिसके साथ हमारे रिश्ते नाते हैं, वही हमें याद आते हैं। तो परमात्मा की याद हमें सहज आती रहे, उसकी विधि है भगवान से संबंध जोड़ो। सिर्फ परमात्मा को मानो नहीं, परंतु सही रूप से जान पहचान कर उनसे संबंध जोड़ो, उनको अपना बनाओ। जब आप ये निश्चय कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे कि परमात्मा ही मुझ आत्मा के असली अविनाशी परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, वो ही मेरे सखा, बंधु, स्वामी, सर्वस्व है। तो जब परमात्मा को ही अपना सर्वस्व स्वीकार कर लेते हैं, तो हर समय हर बात में सबसे पहले परमात्मा की ही हमें याद आएगी। इसलिए बाकी कोई क्रियाकांड नहीं, यही विधि है भगवान से संबंध जोड़ो। और इस योग का आधार है दिल का सच्चा प्यार। जितना परमात्मा से सच्चा प्यार होता जाएगा, उतनी एकाग्रता आती जाएगी। तो ये योग के तीन महत्वपूर्ण लेसन आप सबके चल चुके हैं। उतना ही महत्वपूर्ण है इस संसार सृष्टि खेल को समझना कि ये दुनिया का खेल क्या है, कैसे चलता है। तो सृष्टि का खेल पुरुष और प्रकृति का खेल है। अब तक हम ये समझते रहे प्रकृति और पुरुष का खेल माना हम समझते रहे स्त्री और पुरुष का खेल, परंतु अब आपको स्पष्ट है कि स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है। मैं स्त्री हूँ ये गलत कॉन्शियसनेस है, मैं पुरुष हूँ ये भी गलत कॉन्शियसनेस है। सत्य ये है कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। हम तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। इसलिए राजयोग का पहला अभ्यास सोल कॉन्शियस बनना है। अब प्रकृति माना पांच तत्व, पृथ्वी आकाश जल वायु और अग्नि। शरीर भी प्रकृति के पांच तत्वों से बना है। हम इन आँखों से संसार में जो भी चीजें वस्तुएं साधन देखते हैं ये सब कुछ प्रकृति के पांच तत्वों से बना है। इस दुनिया को इसलिए हम भौतिक जगत कहते हैं। पांच तत्व अनादि अविनाशी है, ना उसकी उत्पत्ति होती है ना अंत होता है, ये अनादि अविनाशी है। इसलिए विज्ञान भी कहता है कि भौतिक शक्ति न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, वो केवल रूपांतरित होती रहती है। पुरुष माना चैतन्य शक्ति आत्मा। गीता में भी कहा है कि शरीर नव द्वार वाली पुरी है, इस पुरी में रहने वाली आत्मा को पुरुष चैतन्य शक्ति कहा जाता है। आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। शरीर को जरा व्याधि आता है। आत्मा प्रकृति से अलग चैतन्य शक्ति है, ज्योति बिंदु है। तो इस प्रकार पुरुष माना आत्मा, प्रकृति माना पांच तत्व। अब इस वर्ल्ड ड्रामा में प्रकृति का कार्य क्या है, पुरुष का कार्य क्या है, परमात्मा का कार्य क्या है? प्रकृति स्वयं अपनी प्राकृतिक चेतना शक्ति से स्थापना पालना विनाश का कार्य करती रहती है। आप देखते हैं पके हुए फलों से वो गिरते हैं, पंछियों के द्वारा हवा के द्वारा उसके बीज फैलते रहते हैं। वो बीज जमीन में गिरते हैं, बीज अंकुरित होते हैं, पौधा पनपता है, पानी मिट्टी के मेल से वृक्ष बनता है। और वो ही प्रकृति के तत्व जब तमो प्रधान बनते हैं तो महाविनाश का भी कार्य करते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, फ्लड्स आते हैं, सुनामी, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स होते हैं और विनाश का भी कार्य होता है। तो ये है प्रकृति द्वारा स्थापना, पालना और विनाश। हम मनुष्य आत्माएं भी स्थापना, पालना, विनाश का कार्य करते हैं। हम ही प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं, आइडियाज क्रिएट करते हैं, ये स्थापना का कार्य है। हम ही उस प्लान को प्रैक्टिकल में लाते हैं, पालना का कार्य है। और वो ही मनुष्य आत्मा पति तमो प्रधान बनती है, तो आपस में लड़ाई, झगड़ा, मारामारी, खून, युद्ध के द्वारा विनाश का भी कार्य करती। अब हमें ध्यान देने की बात ये है कि हम मनुष्य आत्माओं के विचार, वाणी, व्यवहार का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। पशु पंछी प्रकृति सिंपली हमें फॉलो करते हैं, इसलिए हम मनुष्य आत्माओं को अपने विचार, वाणी, कर्म पर अटेंशन देना है। कुछ उदाहरणों से ये बातें बताई है। हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि जब राम राज्य था, हम मनुष्य आत्माएं देवता थे, तो प्रकृति भी सतो प्रधान थी। गाय और शेर, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। माना हम मनुष्य आत्माएं जब नियम संयम में रहते हैं, तो हमारे प्रभाव से प्रकृति, पशु पंछी भी लॉ एंड ऑर्डर में चलते हैं। जब हम अपने नियम मर्यादा तोड़ देते हैं, तो पशु पंछी प्रकृति भी उपद्रवी तमो प्रधान बन जाते हैं। ये भी आप सबने सुना होगा कि प्राचीन काल में, द्वापरी युग में, ऋषि मुनि घने जंगलों के बीच आश्रम बनाकर, गुरुकुल बनाकर रहते थे। उनकी तपस्या के पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर इतने फैलते थे जो जंगल के हिंसक प्राणी भी आश्रम में पालतू प्राणी की तरह आकर बैठ जाते। जब हमारी वृत्ति प्रवृत्ति शुद्ध होती है, तो पशु पंछी भी हमारे प्रभाव से सात्विक बने रहते हैं। ये भी हमें गुजराती में स्कूल में एक काव्य आता था, कवि कलापी का ये काव्य है, जिसमें बात ये बताई है कि एक राजा था जो बहुत प्रजावत्सल था और प्रजा की सुखाकारी का ध्यान देता था। वो वेश बदली करके नगर चर्चा करता था और सबके सुख दुख का समाचार लेता था। एक बार वो ड्रेस बदल कर एक किसान माता के खेत में जाता है, जहां बहुत अच्छी गन्ने की फसल उगी हुई थी। वो किसान माता भी एक अनजान मुसाफिर को आया देख गन्ना काट कर रस निकाल कर ग्लास भर कर उनको देती है। वो राजा जो मुसाफिर के रूप में था, गन्ने का रस पीकर बहुत खुश होता है। बहुत मीठा रस है, उसे खुशी होती है कि मेरे राज्य में इतनी अच्छी फसल उगती है। तो खेत से लौटते हुए उसे विचार आता है कि ऐसी फसल से तो राज्य की तिजोरी में भी कुछ फायदा होना चाहिए, इस पर तो टैक्स लगाना चाहिए। तो वो टैक्स डालता है खेती पर। जब थोड़े समय के बाद वापस वो आता है उसी खेत में वेश बदल कर, फिर वो माता गन्ना काट कर ग्लास में जूस देती है, परंतु थोड़ा ही निकलता है और इतना स्वादिष्ट नहीं है। तो वो राजा पूछता है कि माता इतना ही जूस निकला, स्वादिष्ट भी नहीं है। तब वो माता कहती है कि जब से राजा दयाहीन हुआ तब से धरा भी रसहीन हो गई। माना राजा की वृत्ति का असर प्रकृति पर भी पड़ा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा कुमारी में भी जो हमारी एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट विंग है, वो भी खेती में योग का प्रयोग करते हैं। हमारे गाँव में लगभग 32,000 से भी गाँव में क्लासेस चलते हैं। हमारे खेती के भाई बहने खेत हल चलाते हैं, बीज बोते हैं तब से लेकर फसल काटते हैं तब तक की हर प्रोसेस में योग का प्रयोग करते हैं। भाई बहने योग में खेत में बैठकर योग करके वाइब्रेशन फैलाते, इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पंतनगर उत्तराखंड की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने, साइंटिस्ट ने आकर के सारे स्टेटिस्टिक लिए और उन्होंने साइंटिफिकली ये बताया कि योग का कितना प्रभाव पड़ता है। हमारे देश के वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने भी ये प्रयोग करके बताया था कि अगर हम अपने बाग बगीचों में अच्छे सात्विक साइलेंस के गीत संगीत मधुर बजाते हैं तो पेड़ पौधों का फसल का बहुत अच्छा विकास होता है, क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे फल अनाज सब्जियां उग सकती हैं। ये भी लंदन के अल्बर्ट हॉल में ये एक साइकिक पावर वाला व्यक्ति है यूरी गैलर और आदरणीय दादी जानकी जी का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें यूरी गैलर ने अपनी थॉट पावर से वो चम्मच बैंड कर देता था, चाबियां बैंड कर देता था, चलती घड़ियां स्टॉप कर देता था। उस दिन उसने अपने हाथ में कुछ बीज लिए और थॉट पावर से हाथ में ही बीज उगा कर दिए। तो ये है हमारे विचार वाइब्रेशंस हमारी वृत्ति का प्रकृति पर प्रभाव, हमारी संस्कृति भी हमें सिखाती है कि भोजन बनाते समय जिस प्रकार के विचारों में हम रहते हैं, हमारे विचार वृत्ति का प्रभाव अन्न पर पड़ता है। वो अन्न जो खाता है उनके मन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। वो ही अनाज मसाले तेल है, परंतु मंदिर में परमात्मा की याद में बनाया जाता है तो हम उसको प्रसाद कहते हैं। वो ही अनाज तेल मसालों से प्यार से हमारी माँ बहनें भोजन बनाती हैं, वो प्यार से खिलाती हैं, और वो ही अनाज मसाले तेल से होटलों में बिजनेस पर्पस से भोजन बनता है। तीनों में अंतर क्या है? है तो वही अनाज मसाले तेल, परंतु मनोस्थिति का अंतर है। इसलिए अन्न शुद्धि इस विद्यालय में बहुत महत्वपूर्ण नियम। यहाँ 5,000 से लेकर 30,000 लोगों के ग्रुप्स आते हैं। अभी मार्च से लेकर अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 मास प्रति मास 2 ग्रुप 20,000 के आते हैं। पूरे भारत भर से हमारे जो रेगुलर ज्ञान योग के स्टूडेंट भाई बहने हैं, अब उनके रिफ्रेशर प्रोग्राम चलेंगे। पर कितने भी भाई बहनों का भोजन हो, कोई बाहर से बनाने नहीं आते। हमारे ही पवित्र योगी भाई बहने साइलेंस में शिव बाबा की याद में भोजन बनाते, जिससे भोजन शक्तिशाली बनता है, खाने वालों के मन भी शुद्ध बनते हैं। तो ये सारी बातें बताती हैं कि हमारे विचार वाणी वृत्ति प्रवृत्ति का प्रभाव पशु पंछी प्रकृति पर पड़ता है। तो हम मनुष्य आत्माएं जब पवित्र है तो संसार भी स्वर्ग है, प्रकृति भी सत्य है, हम मनुष्य आत्माएं भी सत्य है। उस कालखंड को सतयुग कहा जाता। अब कलयुग के अंत में हम मनुष्य आत्माएं पतित भ्रष्ट बन गई हैं। हमारे प्रभाव से प्रकृति भी तमोप्रधान बन गई है। तब सदा पावन परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। हम मनुष्य आत्माओं को फिर से सत्य ज्ञान और योग सिखाते हैं, जिस ज्ञान और योग की शक्ति से हमें पतित से पावन बनना है। तो परमात्मा ज्ञान बल, योग बल और पवित्रता के बल से नई पावन सतयुगी दुनिया हम आत्माओं के द्वारा स्थापन कराते। इसलिए सृष्टि चक्र के बारे में हम समझेंगे कि जैसे दिन रात का खेल अविरत गति से चलता ही रहता है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये एक अविनाशी क्रम से साइकिल चलता ही रहता है। मौसम का साइकिल भी स्वयं बदलता रहता है। गर्मी के बाद बरसात, फिर सर्दी, पतझड़, फिर वापस बसंत बहार आती है। ये मौसम का साइकिल भी चलता ही रहता है। लाइफ एंड डेथ का साइकिल भी हम देखते हैं। जन्म, जीवन, मृत्यु, पुनः जन्म, जीवन, मृत्यु का ये साइकिल चलता ही रहता है। इसी प्रकार द होल वर्ल्ड साइकिल भी अनादि अविनाशी रीति से चलता ही रहता है। वो कब शुरू हुआ, कब अंत होगा, इसका यही जवाब परमात्मा ने अपने सत्य ज्ञान में हमें बताया है कि ये अनादि अविनाशी। हर साइकिल का अपना निश्चित टाइम ड्यूरेशन है। दिन और रात का साइकिल 24 घंटे का है। प्रति 24 घंटे के बाद वो रिपीट होता है। सेम सप्ताह का साइकिल 7 दिन का है। 7 दिन के बाद वापस वो ही संडे, मंडे, ट्यूसडे आता है। वर्ष का साइकिल 12 मास का है। वापस वही जनवरी, फरवरी आते हैं। सेम द होल वर्ल्ड साइकिल 5000 वर्ष का है। प्रति 5000 वर्ष के बाद सृष्टि का ये खेल रिपीट होता है। इसलिए कहा जाता है नथिंग इज न्यू, कुछ भी नया नहीं है। जो हुआ था वो ही हो रहा है। पर हम मनुष्य आत्माएं त्रिकालदर्शी नहीं है, हम सिर्फ वर्तमान दर्शी हैं। इसलिए क्या हुआ था हमें पता नहीं है, इसलिए हर घटना हमें नई लगती है। पर ये सत्य है, नथिंग इज न्यू। गुरु ग्रंथ साहब में भी ये बात कही है कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। जो हुआ था वो ही हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा है चिंता ताकि कीजिए अनहोनी होए। अनहोनी हो तो चिंता करें। जो हुआ था वो ही फिर से हो रहा है तो चिंता क्यों करनी है। गीता में भी ये बात कही है कि हे अर्जुन, मैं और तुम और ये राजाएं पहले भी थे, अभी भी मिले हैं, और ऐसा कोई काल नहीं जो हम, तुम और ये ना हो। तो ये ड्रामा पूर्व निश्चित है। हरेक का पार्ट अपना अपना है। इसलिए कहा जाता है एक ना मिले दूसरे से। हरेक की अकल भी अलग अलग है, शकल भी अलग अलग है। क्योंकि हम आत्माएं इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर्स है। हरेक का अपना अपना रोल हर आत्मा में भरा हुआ है। देखो, ज्योतिष विज्ञान भी इसी सिद्धांत पर है। ज्योतिष के पास जाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, और वो ज्योतिषी भी अपने यथा ज्ञान अनुसार बताता है कि आपके रेखाओं को देखते हुए दिख रहा है आपके जीवन में ये होगा ये होगा ये होगा। जरूर ये घटनाएं पूर्व निश्चित है तब तो वो बता सकते हैं। अगर घटनाएं पूर्व निश्चित ना हो तो ज्योतिष विज्ञान भी नहीं हो सकता है। तो संसार का खेल 5000 वर्ष का है जो 4 स्थिति में चलता है जिसको 4 युग हम कहते हैं। हर साइकिल आप देखिए 4 स्टेजेस में चलता है। डे एंड नाइट का साइकिल भी सुबह दोपहर शाम और रात ये 4 स्टेजेस में चलता है। इसलिए कहा जाता है परिवर्तन संसार का नियम है। हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। हम कहते हैं नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ओनली चेंज इज परमानेंट। तो प्रकृति का हर साइकिल भी परिवर्तन को प्राप्त होता रहता है। आप लाइफ एंड डेथ का साइकिल देखिए, बचपन, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था, ये 4 स्टेजेस से चलता है। मौसम का साइकिल भी देखो, गर्मी, बसंत, अरे वर्षा, सर्दी, पतझड़, वापस बसंत आती है। तो संसार का हर साइकिल अपने क्रम से परिवर्तन को प्राप्त होता हुआ चलता है। तो सृष्टि का टोटल खेल भी 4 युग से चलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग की आयु समान है 1250 वर्ष, पर हम आत्माओं की स्थिति बदलती है उसके आधार पर सृष्टि के खेल का स्वरूप भी बदलता है। सतयुग में जब हम आत्माएं सत्य थी, प्रकृति भी सत्य थी, उस कालखंड को सतयुग कहा जाता है। हर धर्म इस बात को स्वीकार करता है कि सृष्टि अपने प्रारंभ काल में बिल्कुल सतो प्रधान शुद्ध थी। इसको ही हम स्वर्ग वैकुंठ कहते हैं। मुस्लिम भाई बहने जन्नत बहिष्ट कहते हैं, क्रिश्चियन भाई बहने हेवन पैराडाइज कहते हैं, सिख भाई बहने सचखंड सुखधाम कहते हैं। तो हम मनुष्य आत्माएं जब संपूर्ण निर्विकारी सर्व दिव्य गुणों से संपन्न देवता थे तो प्रकृति भी सतो प्रधान और समृद्ध थी। संसार को ही स्वर्ग कहा जाता। स्वस्तिक का हाथ आप देखिए सतयुग में राइट साइड है, वो शुभ की निशानी है कि सतयुग में हम राइटियस थे, प्योर थे, पावरफुल थे, सत्य थे, दिव्य थे। प्रकृति भी सतो प्रधान थी, वहां शुभ ही शुभ था, 100% पवित्रता, सुख शांति और संपत्ति थी। पर जैसे आपको बताया कि परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए सतयुग के अंत में कुछ परसेंटेज में हमारी पवित्रता सत्यता की शक्ति थोड़ी कम होती है। त्रेता युग की शुरुआत इसको कहते हैं। इसलिए आप देखिए स्वस्ति का हाथ राइट साइड से नीचे जाता है, माना वहां अपवित्रता नहीं है, असत्यता नहीं है, दुख नहीं है, बस स्वर्ग सतयुग 100% प्योर है। त्रेता युग में हमारी प्यूरिटी न्यूनेस की कुछ चमक कम होती है, उसको त्रेता युग कहते हैं। इसलिए दो युग सतयुग और त्रेता युग पवित्रता सुख शांति और समृद्धि का है, धन धान्य से धरा भरपूर है, वहां कोई दुख शांति नहीं, कोई अभाव नहीं है। परंतु त्रेता के अंत में द्वापर युग से हम आत्मविस्मृत होते हैं, बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, अपवित्रता की शुरुआत होती है। इसलिए स्वस्ति का हाथ लेफ्ट साइड बताया है, जो अशुभ की शुरुआत की निशानी। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है कि द्वापर युग से देवी देवताएं वाम मार्ग पर गए, उल्टे विकारों के मार्ग गए। जब सतयुग और त्रेता युग में अपनी देवताई स्थिति में थे, वहां कोई विकार अज्ञानता पाप नहीं था, द्वापर युग से अपवित्रता शुरुआत होती है। इसलिए दुख का एहसास शुरू होता है, भक्ति की शुरुआत द्वापर से होती है। और कलयुग में आप देखिए स्वस्ति का हाथ लेफ्ट साइड से ऊपर जा रहा है, जो अशुभ अपवित्रता दुख शांति की वृद्धि की निशानी है। जो वर्तमान समय हम सभी देख रहे हैं, ये ही कलयुग अंत का समय है, जब अति धर्म ग्लानी का समय है, अधर्म अति फैल गया है, चारों ओर भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार चारों ओर फैल गया है। हर मानव मन में विकार आ गए हैं, कितने गंदी मनसा और कर्म इंसान कर रहा है, ये है कलयुग अंत का समय। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि समय कौन सा चल रहा है, ये कलयुग अंत और सतयुग आदि का संधि काल, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है, जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। हम कलयुगी पतित मनुष्य आत्माओं को सत्य ज्ञान और योग सिखाते हैं, जिस ज्ञान और योग की शक्ति से हमें पवित्र बनना है और हम आत्माओं की पवित्रता के बल से फिर टोटल संसार भी बदलता है और क्रम अनुसार फिर से सतयुग आता है। जैसे कितनी भी अंधेरी अमावस की रात हो तो भी सवेरा अपने समय से होता ही है, ऐसे कलयुग के बाद पुनः सतयुग का ही समय है। उस सतयुगी दुनिया में वो कलयुगी आत्माएं जाएगी जो कलयुग के अंत महापरिवर्तन की वेला के समय परमात्मा के आदेश को मानकर जो अपने वर्तमान जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे और विश्व को पावन बनाने के ईश्वरीय कार्य में मददगार बनेंगे, वो नई दुनिया के योग्य बनेंगे। तो ये है समय की पुकार और परमात्मा का आदेश। दोनों को सुनकर जो आत्माएं सावधान हो जाएगी, अपने जीवन को पावन बनाएगी, परमात्मा के कार्य में मददगार बन जाएगी, वो सतयुगी दुनिया के दिव्य प्रारब्ध को प्राप्त करेगी। तो चित्र में बताया है कि वर्ल्ड साइकिल में अभी जो समय चल रहा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय चल रहा है। स्वयं निराकार ज्योति बिंदु शिव परमात्मा सृष्टि पर आए हैं, साधारण मानव तन ब्रह्मा तन में दिव्य प्रवेश कर हमें ब्रह्मा मुख से सत्य ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, जो आप ज्ञान सुन रहे हैं वो कोई ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ज्ञान नहीं है। वास्तव में ज्ञान दाता ज्योति बिंदु शिव परमात्मा है। वो ही ज्ञान की बातें आप सुन रहे हैं। ये समय है जब परमात्मा हम आत्माओं से मिलते हैं, हमें पति से पावन, मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये समय है हम अपने हर कर्म रूपी बीज को श्रेष्ठ बोएं, क्योंकि ये सीजन है। जैसे सीजन में बोया हुआ बीज, क्वालिटी बीज बोया तो अनेक गुना क्वालिटी फसल हमें मिलेगी, पर गफलत से सीजन में अगर हल्की क्वालिटी का बीज बोया तो अनेक गुना हल्का फल मिलेगा। ये भी सीजन है श्रेष्ठ कर्म के बीज बोने की। अभी जो आत्माएं सत्कर्म के बीज बोएगी वो अनेक गुना अनेक जन्मों तक सुख शांति समृद्धि के फल पाएंगे, क्योंकि ये महापरिवर्तन की वेला है। भगवान के आदेश को मानकर जो अपने जीवन की जवाबदारी लेते हैं और अपने जीवन को पवित्र योगी बनाते हैं, वे अनेक जन्मों तक सुख की प्रारब्ध को पाते हैं। तो यहां सृष्टि खेल की तुलना एक ड्रामा फिल्म के साथ की है कि ये सृष्टि एक रंगमंच है, ये वर्ल्ड एक अनलिमिटेड बेहद का ड्रामा है। सूर्य चांद सितारे इस रंगमंच की रोशनी है। हम सभी आत्माएं इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर्स है। शरीर हमारी ड्रेस है। शरीर रूपी ड्रेस पहनकर वैरायटी रोल्स हम प्ले करते हैं। हम ये शरीर ड्रेस नहीं है, हम ये रोल्स नहीं हैं जो प्ले कर रहे हैं। हमारी रियल आइडेंटिटी है कि हम आत्मा हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। जब हम इस वर्ल्ड ड्रामा में आते हैं, शरीर धारण करते हैं, फिर हम वैरायटी रोल्स प्ले करते हैं। कोई एक्टर कोई फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर का ड्रेस धारण करता है, पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले करता है, तो हम उस एक्टर को वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं कहेंगे ना। वो अपने आप को पुलिस इंस्पेक्टर प्रैक्टिकल लाइफ में तो नहीं मान लेगा ना। उसको पता है ये मेरा फिल्म में रोल है, ये मेरा रियल परिचय नहीं है। इसी प्रकार शरीर रूपी ड्रेस हमने पहना, पर हम अपनी ही आइडेंटिटी भूल गए और खुद को ड्रेस समझने लगे। जिन्होंने स्त्री शरीर धारण किया वो अपने आप को ही स्त्री समझने लगे, पुरुष शरीर धारण किया वो अपने आप को पुरुष समझने लगे। वो तो ड्रेस पहना, हम तो आत्मा एक्टर है, ये सत्य हमें याद रखना। हम वैरायटी रोल्स प्ले करते हैं, पर हम वो रोल नहीं। भाई अमिताभ बच्चन जी ने कुली फिल्म में कुली का रोल प्ले किया तो हम कहेंगे कि अमिताभ बच्चन जी कुली है? नहीं, वो उनका रोल था। वो तो जो है वो ही आत्मा है ना, एक्टर। तो हम भी वैरायटी रोल्स प्ले करते हैं ना। हम बच्चों के आगे माँ बाप के रोल में हैं, माँ बाप के आगे हम बच्चे के रोल में हैं, पति के आगे पत्नी के रोल में, पत्नी के आगे पति के रोल में हैं, डॉक्टर पेशेंट के आगे आप डॉक्टर के रोल में हैं। ये रोल है। हम आत्मा हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, ये हमारी रियल आइडेंटिटी है। इस वर्ल्ड ड्रामा में हम आत्माओं ने दो ऐसी भूलें की जो ये वर्ल्ड ड्रामा आज बिगड़ गया। कौन सी भूलें की? देखो, हर एक्टर को डायरेक्टर के तरफ से जो रोल मिलता है वो एक्यूरेट प्ले करने पर ध्यान देना है ना। अगर वो एक्टर खुद के रोल पर ध्यान देने के बजाय दूसरे के रोल को देखेगा कि इनके घर में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, अगर हम दूसरों पर ध्यान देंगे तो अंडरस्टूड है अपने पर ध्यान नहीं दे सकेंगे ना। दूसरे एक्टरों को देखना किसका कार्य है? डायरेक्टर का कार्य, एक्टर का कार्य नहीं है। एक्टर का कार्य है अपने रोल पर ध्यान देना। हम मनुष्य आत्माओं ने खुद के मन वचन कर्म पर अटेंशन देने के बजाय हम दूसरों के कर्मों को देखते रहते हैं, ये ऐसे हैं, कैसे हैं, वैसे हैं, ये धंधे में क्या करते हैं, सब क्या कर रहे हैं। तो हम दूसरों को देखने गए, हमारे अपने कर्म बिगड़ गए। इसलिए परमात्मा अभी हमें डायरेक्शन देते हैं कि आप अपनी एक्शन पर ध्यान दो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना। इसी प्रकार दूसरी भूल ये कि मान लो एक दृश्य में चार एक्टर है, चारों को अपना अपना पार्ट प्ले करना है ना। भाई एक को कहा तुम्हें रोना है, उसी समय दूसरे को कहा तुम्हें हंसना है, चौथे तीसरे को कहा तुम्हें उनको शिक्षा देनी है, उपदेश देना है, चौथे को कहा तुम्हें चुप रहना है। तो हरेक को अपना अपना रोल प्ले करना है ना। अगर एक रोता है उसको देख दूसरा भी रोए, तीसरा भी रोए, चौथा भी रोए, तो ड्रामा तो बिगड़ जाएगा। तो हम सभी ने भी क्या किया, खुद के कर्मों पर अटेंशन देने के बजाय दूसरे के कर्म को देखते हैं और फॉलो करने लगते। ये भ्रष्टाचार करते हैं, ये भ्रष्टाचार करते हैं, तो हम भी करेंगे, करके टोटल भ्रष्टाचार व्यापक हो गए, पूरी दुनिया ही भ्रष्ट बन गई, क्योंकि दूसरों को देख के हर कोई करने लगा। इसलिए अब परमात्मा आकर हमें इस वर्ल्ड ड्रामा का सही ज्ञान देते हैं कि अब ये ड्रामा का साइकिल पूरा हो रहा है। अब नाटक के एंड पर हम पहुंच गए हैं, इसलिए फिर से डायरेक्टर आए हैं और वे हमें बता रहे हैं कि अब ये साइकिल पूरा होने की तैयारी में है और फिर से नया साइकिल शुरू होने से पूर्व जैसे ड्रामा पूरा होता है, एक्टर्स ड्रामा की ड्रेस उतार कर अपनी नॉर्मल ड्रेस में वापस घर जाते हैं, हमें भी शरीर यहाँ ही छोड़ना है, हम आत्माओं को वापस अपनी ओरिजिनल प्योर स्थिति बनाकर वापस घर परम धाम में जाना। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब ये ड्रामा पूरा हुआ, तुम आत्माओं को वापस घर जाना है, या तो ज्ञान और योग से फिर से प्योर पावरफुल बनकर अपनी ओरिजिनल स्टेज में आकर वापस जाओ, नहीं तो अपने कर्मों का हिसाब किताब, उनकी सजा हरेक को भोगनी ही होगी और हिसाब चुकाकर फिर वापस जाओ। इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट समय है। खुद परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा हर कर्म का डायरेक्शन हमें दे रहे हैं। हम अपना रोल जितना ऊंचा बनाएंगे, हीरो एक्टर बन सकते हैं और सतयुग से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये है टोटल वर्ल्ड ड्रामा। हम इस वर्ल्ड ड्रामा में एक्टर बने हैं, हमें कर्म करने ही हैं। कोई भी सदा के लिए इस वर्ल्ड ड्रामा से छूटकर परम धाम में बैठ नहीं सकता। एक्टर मीन्स एक्शन करना ना। हर एक्टर क्या लक्ष्य रखते हैं कि हम हीरो एक्टर बने, है ना। हर कोई टॉप पर पहुंचना चाहता है ना, नहीं पहुंच पाता है वो अलग बात है, पर जो एक्टर बनता है वो क्या लक्ष्य रखता है कि मैं हीरो एक्टर बनूं। तो हमें भी अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर इस वर्ल्ड ड्रामा के हीरो एक्टर देवी देवता बनना है। अभी जो जिस युग के लायक अपने आप को बनाएंगे वो उस युग में आएंगे और अपना पार्ट प्ले करें। इसलिए परमात्मा के तरफ से सभी आत्माओं को ऑफर है कि हर कोई हीरो एक्टर बन सकते हैं, अपने आप को जितना ऊंचा बनाना चाहे बन सकते हैं। ये हमारे अपने पुरुषार्थ पर है। भगवान ज्ञान देते हैं, हम हिम्मत करते हैं, मदद करते हैं। इसलिए ये है समय की पुकार, संसार का खेल अब अंत पर पहुंचा है। भगवान आकर इस बिगड़ी को फिर से बना रहा है। बहुत सुंदर गीत हम सुनेंगे। परमात्मा हम आत्माओं को अभी क्या संदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, जिसको मानकर इस महापरिवर्तन की वेला के समय, समय परिस्थिति के प्रभावों से ऊपर उठकर अपने आप को हमें दिव्य बनाना।
पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों।
पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों।
मन रखो पवित्र, तन रखो पवित्र, मन रखो पवित्र, तन रखो पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो पवित्र, तन रखो पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार, तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो।